ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चार वर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एनसीईआरटी के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर जेएस राजपूत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
जेएस राजपूत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
जेएस राजपूत जी, स्वतंत्रता के बाद से भारत के शैक्षिक ढांचे में तीसरा सबसे बड़ा सुधार हुआ जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया, तो ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुख्य रूप से किन मुद्दों पर बल देती है?
किसी भी देश की शिक्षा नीति जब बनती है तो वो पहले ये देखती है कि उस देश में शिक्षा कहाँ पर पहुंची है, क्या क्या प्रगति हुई है, पुरानी नीतियों का क्रियान्वयन हुआ है नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितना सफलतापूर्वक हुआ है, तो उस अनुभव का लाभ उठाकर बनती है। दूसरा कि भविष्य की चुनौतियां क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में क्या चुनौतियां आने वाली है। तो ये सारी प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसमें बहुत समय लगता है। हमारी जो नई शिक्षा नीति बनी थी वो करीब 5 साल के विचार विमर्श के बाद बनी है। 2016 से शुरू हुआ कि पहले से थोड़ा शुरू हुआ और उसके बाद 5 से 4 साल पहले देश को समर्पित किया गया। मुख्य उद्देश्य ये होता है कि देश के सामने ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो भविष्य की चुनौतियों के समाधान ढूंढ सकती हो, जो सक्षम हो, जो इस बात के लिए सक्षम हो कि जो परिवर्तन होंगे उनको समझ सके और उनका हिस्सा बन सके और परिवर्तन का हिस्सा यो बने कि नया ज्ञान भी सृजित कर सके। क्योंकि ये दुनिया में मानी हुई बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से कहा जाता था कि भविष्य के साम्राज्य ज्ञान के साम्राज्य, फ्यूचर एम्पायर शैल बी एम्पायर ऑफ नॉलेज, जहां जहां ज्ञान होगा वही देश आगे बढ़ेगा। और ये हम सब देख रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी है, हमारे जैसे लोग भी ये देख रहे हैं कि इस समय जहां पर ज्ञान शक्ति अधिक होगी, जहां पर आर्थिक दृष्टि की नीतियां सही होंगी, जहां शिक्षा सब तक पहुंच गई होगी, और यही उद्देश्य नई शिक्षा नीति में आए हैं, सब तक शिक्षा को पहुंचाना, अच्छी शिक्षा पहुंचाना और उसके साथ ही साथ लोगों को इसके लिए तैयार करना कि वे ज्ञान का जो संवर्धन विश्व में हो रहा है उसमें हिस्सेदारी कर सकें, नया ज्ञान पैदा कर सकें और सारे समाज को इसके लिए तैयार करना कि जो परिवर्तन की तेजी है। देखिए, परिवर्तन ना एक बात है, परिवर्तन की तेजी को ध्यान में रखती है नई शिक्षा नीति कि आज अगर पहले हम टाइपराइटिंग सीख लेते थे 40 साल हमारा एक टाइपराइटर से काम चल जाता था, आज जो मोबाइल हमारे हाथ में है कोई नहीं कह सकता कि 6 महीने बाद उसमें कौन से नए फीचर्स होंगे, क्या उसकी शक्ल होगी, क्या क्या और करेगा, इसलिए वो पहले वाली जो प्रवृत्ति थी वो अब नहीं चलेगी। शिक्षा नीति नई पीढ़ी को इसके लिए तैयार करती है।
जयेश राजपूत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब से लागू हुई है तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो आप इसे कहां पर देखते हैं?
देखिए, हमारी इसके पहले की शिक्षा नीति मुख्य रूप से नीति बनी से 1986 में और उसके 2-3 साल बाद कुछ कारणों से उसे पुनः उसको देखा गया 1992 में। तो हम ये कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86/92, वहां पर भी यही उद्देश्य थे। उस समय हम लोगों ने कंप्यूटर्स की बात की थी, हम उस संभावना को देख रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए 20वीं शताब्दी को कहते हैं परिवर्तन की सदी थी, बड़े परिवर्तन हुए विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, और हम कहते थे पहले साइंस का युग है, फिर हुआ तकनीकी का युग है, अब हम जहां पर है वो संचार तकनीकी का युग है, जहां पर परिवर्तन की तेजी बहुत तेज होंगे आगे आई, सब लोग इससे प्रभावित हैं। तो 20वीं सदी थी परिवर्तन की सदी और 21वीं सदी है परिवर्तन की गति की सदी। तो गति की सदी के साथ आपको सजग और सतर्क रहना पड़ेगा, हर विद्यार्थी को ऐसे बनाना है कि वो सजग और सतर्क रहे। तो इसलिए ये शिक्षा नीति उस दिशा में ही बनाई गई थी, सभी का साथ लेकर बनाई गई है और मुख्य रूप से ये कहती है कि ज्ञान की खोज हो। जैसे पहले जो शिक्षा व्यवस्था हमें मिली थी उसमें उसके उद्देश्य अलग थे, उसके बनने के उद्देश्य थे, हमारे उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद अलग हो गए, धीरे धीरे हम अपनी नीति बनाने पर आगे बढ़े लेकिन हम पूरी तरह बढ़ नहीं पाए। हमारे को रोपित व्यवस्था मिली थी, बाहर से अंग्रेज लाए थे, उसी को हम आजादी के बाद बढ़ाते रहे, हमने छोटे मोटे परिवर्तन किए, मगर जो बड़ा परिवर्तन इस बार हुआ है, हालांकि कहते तो हम पहले भी थे लेकिन इस बार ये व्यवहारिक रूप में आ गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, हम ऐसी शिक्षा प्रणाली हम विकसित कर रहे हैं हमारे संस्थानों में, हमारे स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, शोध संस्थानों में, जिसकी जड़ें भारत की ज्ञान परंपरा में गहराई तक नीचे गई हुई है और जिसकी प्रतिबद्धता प्रगति के प्रति नए ज्ञान के, यानी नकल करके शिक्षा नीति नहीं बना सकते, आपकी शिक्षा नीति आपकी ज्ञान परंपरा से उपजनी चाहिए, जो यहाँ किया गया। इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा पर खूब अध्ययन हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ऐसा क्या है जो आज भी उपयोगी है, जो आगे भी उपयोगी रहेगा। और भारत की ज्ञान परंपरा की सबसे सशक्त स्थिति यही है कि हमने ऐसे ऐसे पद्धतियां बनाई, ऐसी चीजें सोची हमारे दार्शनिकों ने, हमारे विद्वानों ने, कि वे आज भी शास्त्र में हर जगह पर बनी हुई। जैसे पंडित विद्यानवास मुझे कहते थे कि 400 पान होते हैं, वो हमारी शिक्षा नीति में है, अध्ययन करिए फिर मनन करिए। विद्यार्थी जो अध्ययन करे, पढ़े, लेक्चर सुने, उसके बाद सोचे क्या सुना, क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या समझ में आया, फिर चिंतन करे, फिर बातचीत करे, उसके बाद ये देखे कि इस ज्ञान का सदुपयोग क्या होगा। उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है जिसका उपयोग बच्चा न जानता हो, या युवा न जानता हो, या नागरिक न जानता हो। याद करके परीक्षा पास करने से हटना इस शिक्षा नीति की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो पूरी तरह लागू हो जाएगी तो अनेक प्रकार की समस्याओं से बच्चों को छुटकारा मिल जाएगा, अनेक प्रकार के तनाव से छुटकारा मिल जाएगा। और ये जब अध्ययन और अध्यापन होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि अध्यापक आया और उसने एक पाठ को पढ़ाया और चला गया। अब होगा साथ साथ पढ़ने और सीखने की बात होगी। ये शुरू हो गया है बहुत जगह पर। तो अब ऐसे शिक्षक प्रशिक्षक तैयार होंगे जो विद्यार्थी के साथ मिलकर कहें, आओ मिलकर सीखें, समस्या है तो समाधान ढूंढो, तुम्हें हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। इस तरह से नया ज्ञान जब पैदा होता है तो नवाचार हो जाता है, नए नए आविष्कार होते हैं, शोध बढ़ जाते हैं, और यही इस शिक्षा नीति का नया कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। वातावरण बहुत तेजी से बदल रहा है और बहुत जल्दी ही इसका परिणाम हमें बाहर भी दिखाई देने लगे।
राजपूत जी, भारत में विद्यालयी और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने में नई शिक्षा नीति अब तक कितनी लाभप्रद रही है?
देखिए, शिक्षा नीति के लागू होने में समय लगेगा। जैसे इसको बनाने में समय 4-5 साल का लगा, वैसे ही लागू होने में भी बहुत समय लगता है, लेकिन वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए सिद्धांतों के अनुसार पाठ्य पुस्तकें बनना शुरू हो गई हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनना शुरू हो गया है। जो संचार तकनीकी का उपयोग है, उस उपयोग को लेकर के क्या नवाचार होंगे, कैसे सब तक पहुंचाया जाए, उस पर काम शुरू हो गया है। और ये आप किसी संस्था में जाइए तो आपको दिखाई देगा कि बहुत तेजी से और बड़े उत्साह से ये सारे कार्य हो रहे हैं। और ये कार्य जब होंगे तो निश्चित रूप से देश के विकास और प्रगति में ये दिखाई देने लगेगी। मान लीजिए कक्षा 6 में कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो 11-12 साल का है, और नई शिक्षा नीति के अनुसार जब आगे बढ़ेगा तो अगले 7-8 साल के बाद आप देखेंगे कि वो नए ढंग से चीजों को देखेगा। हमारे यहाँ जो रटने की परंपरा थी, केवल याद करके वही कहना जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, उत्तर में वही भाषा लिखने की जो परंपरा थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और बहुत काम हो रहा है परीक्षा प्रणाली को परिवर्तित करने में। हम बच्चे की उपलब्धियों को पूर्णता से कैसे जांचें, केवल उसने याद कर लिया है और उसको रिप्रूव किया है, नहीं, जो उसने पढ़ा है उसका उपयोगकर्ता क्या वो जानता है, इस तरह के प्रश्न बनाने की बात आ रही है। और निश्चित रूप से इसमें अध्यापकों का प्रशिक्षण हो रहा है, हर जगह हो रहा है और बड़ी संख्या में हो रहा है, उच्च शिक्षा में भी हो रहा है, स्कूल शिक्षा में भी हो रहा है, और अध्यापकों को उसमें रुचि आ रही है, क्योंकि जो नई पद्धतियां आई हैं, जो नई बातें आई हैं, जो नए सिद्धांत आए हैं, उसमें हर व्यक्ति जो है नया सीखने के लिए कहीं न कहीं अंतर्मन से चाहता है। हर बच्चे की शिक्षा नीति इस बात पे जोर देती है। गुरुदेव टैगोर का एक शब्द है कि दो वरदान हर बच्चे को मिले होते हैं, पावर ऑफ आइडियाज, पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो ये शिक्षा नीति इन दोनों वरदानों को बढ़ाती है, घटाती नहीं। गुरुदेव की शिकायत यही थी, इसीलिए उन्होंने शांतिनिकेतन बनाया। वो कहते थे हमारी शिक्षा पद्धति इन दोनों वरदानों को कुंठित करती रहती है। नई शिक्षा नीति उन्हें कुंठित नहीं करेगी। बच्चे के कोई भी विचार होगा, संगठना होगी, उसको अध्यापक सुनेगा, बात करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा, और वहां से निकलेगी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। और इस सब को, अगर इन तीनों को, आइडियाज, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी की बात सब समझ जाएंगे जो शिक्षा नीति की पद्धतियों में आती है, तो निश्चित रूप से हमारी जिज्ञासा प्रबढ़। जिज्ञासा जब प्रबढ़ होती है तभी न्यूटन उससे को देख करके आविष्कार करता है। जिज्ञासा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष। जो शिक्षा नीति, जो स्कूल, जो अध्यापक बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा कर दे, उसकी जिज्ञासा को रोके नहीं, कुंठित न करे, आगे बढ़ाए, वही अध्यापक सही होगा। ऐसे ही अध्यापक तैयार होंगे, ऐसी ही पद्धतियां विकसित हो रही हैं। जैसे एक बड़ी छोटी सी बात है, हम एक साल का बीएड टीचर ट्रेनिंग में करते थे और वो बड़ी खराब स्थिति में पहुंच गया है। इसमें बहुत सी बातें कही जा सकती। अच्छा अध्यापक 4 साल के कार्यक्रम में तैयार होगा। बीएससी, बीएड, बीएड, बीएड करके 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के द्वारा ही अध्यापक तैयार होंगे। एक साल का जो पाठ्यक्रम है उसको हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे, 2030 तक वो समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, क्योंकि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम मैंने चलाए हैं, देखा है, और बहुत अच्छे विद्यार्थी उससे निकलते हैं।
राजपूत जी, प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरह से अपनी सहायता पहुंचाएगी?
मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि शिक्षा नीति कितनी अच्छी क्यों न हो, वो उसकी सफलता जो है कई पक्षों पर भी निर्भर करती है। सबसे पहला यह है कि समाज उसको स्वीकार करे और अपना सहयोग दे। केवल सरकारों पर निर्भर होकर के या शिक्षा संस्थानों पर निर्भर होकर के हम सफल नहीं हो सकते। ये शिक्षा नीति सक्षम है, इसमें संभावनाएं निहित है, ये बहुत बड़े परिवर्तन कर सकती है, इसमें कोई शक मुझे नहीं, क्योंकि मैं किसी न किसी ढंग में इससे जुड़ा रहा हूं। अगर शिक्षा में व्यापारीकरण समाप्त नहीं हुआ, जो बड़ी मात्रा में सभी जानते हैं और घुस गया है, उसे कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए हमें समाज के हर वर्ग का ही नहीं, हमें राजनेताओं का भी बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। अगर वो लोग भी इसमें सहयोग करें, इसको समाप्त करें। शिक्षा जो है लाभांश कमाने का जरिया नहीं है, भारत की परंपरा में, भारत की संस्कृति में, उससे जो हट सके वही शिक्षा में आए, बाकी शिक्षा में ना आए, क्योंकि इस शिक्षा नीति में एक शब्द लिखा हुआ है जो मैं कहना चाहता हूँ। जस्टिस जेएस वर्मा ने 2012 में लिखा कि भारत में 10,000 बीएड के कॉलेज डिग्री बेच रहे हैं, 2020 की शिक्षा नीति में इसको 15.2 में दोहराया गया है। तो इस स्थिति से निपटने का सबसे पहली बड़ी चुनौती यह है कि आपका अध्यापक सही ढंग से तैयार होना चाहिए, तभी ये नीति सफल होगी। मैं बार बार ये दोहराता हूँ अपने भाषणों में, जहाँ जहाँ जाता हूँ कहता हूँ कि शिक्षा नीति में कोई कमी नहीं, लेकिन क्रियान्वयन में हम कमजोर हैं। अन्यथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2012 में ये क्यों कहना पड़ता है कि 10,000 बीएड कॉलेज जो है वो केवल व्यापार कर रहे हैं और वो डिग्री बेच रहे हैं, साफ लिखा दिया सेलिंग डिग्री, 2020 में इसको दोहरा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो कमजोरी है वो है दूसरा, देश को अध्यापकों का सम्मान करना सीखना, वी मस्ट ट्रस्ट अवर टीचर, हमें अपने अध्यापकों पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा बिंदु है कि एक शैक्षिक प्रशासन की व्यवस्था देश में बनाई जानी चाहिए। डॉक्टर कोठारी ने लिखा था अपने कमीशन की रिपोर्ट में कि इंडियन एजुकेशन सर्विस बननी चाहिए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ इसका मुख्य कारण यह है कि हमने प्रशासन के अंतर को नहीं समझा। ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एक होता है, लेकिन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको अलग से व्यवस्था तैयार करनी है, और अगर वो व्यवस्था तैयार हो गई तो निश्चित रूप से यह शिक्षा नीति बहुत सफल होगी और भारत ज्ञान समाज की ओर बहुत आसानी से बढ़ेगा। भारत को जब विश्वगुरु माना गया था तो केवल उसके ज्ञान के कारण माना गया था, उसके दर्शन के कारण माना गया, उस पुण्य मनीषियों के कारण माना गया था जिन्होंने बिना किसी उपकरण के सारे ब्रह्मांड को समझ लिया था, कैसे कैसे पंचांग बना लिए थे। अगर वो तब कर सकते थे तो हम तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। नीति हमें दिशा दिखा सकती है, लेकिन प्रयास तो व्यक्ति को करना पड़ेगा, समाज को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा, और वही अपेक्षा हमें आगे करनी चाहिए।
राजपूत जी, निपुण भारत, पीएम ई विद्या, एनसीएफएफएस और जादुई पिटारा या फिर निष्ठा और नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर जैसे कार्यक्रम हमें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं?
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गांधी जी तकली की बात करते थे तो वे सिद्धार्थ रूप में बहुत बड़ी बात करें, हाथों से काम करना जो सीख लेता है उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और कौशल सीखना जो है भविष्य में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जितने भी कार्यक्रम हैं, ये सारे कार्यक्रम उसी के लिए हैं। पहले हम शिक्षा का व्यवसायीकरण के जब वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात हमने 1980 की शिक्षा नीति में कही, बाद में भी उसको कहा, लेकिन हम वहां पर बहुत सफल नहीं हुए और हम व्हाइट कॉलेज ऑफ वर्क की तरफ ही बढ़ते रहे। अब दुनिया में सबकी समझ में आ गया है कि नहीं, बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर आपको कौशल आता, वो कौशल कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट का कौशल हो सकता है, वो आपके आईसीटी का कौशल हो सकता है, वो कुछ क्रिएट करने का हो सकता है। जहां जहां क्रिएटिविटी है, आइडियाज है, इमेजिनेशन है, क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है, वहां वहां पर उस चीज को बढ़ाने के लिए, उसे आकर्षित करने के लिए सारे कार्यक्रम जिनके आपने नाम लिए हैं वे इसीलिए किए गए हैं। मनुष्य केवल बैठकर हाथ से ही काम करे, केवल लिखने पढ़ने से ही नहीं होता, उसे कुछ सृजित भी करना पड़ता। जो मैंने प्रारंभ में कहा कि ज्ञान वही है जिसका उपयोग, और उपयोग ही नहीं हो, मूल्यों की शिक्षा के द्वारा बताया जाए कि ज्ञान का सदुपयोग, ये सदुपयोग वाली बात बड़ी महत्वपूर्ण। ज्ञान जब खोजते हैं और खोजे हैं बहुत से, तो उनके दुरुपयोग बहुत हुए, उस दुरुपयोग के कारण वैश्विक समस्याएं पैदा हुई हैं। उन सबसे बचने के लिए शिक्षा नीति में पूरी व्यवस्थाएं हैं, व्यक्ति के विकास को उसी दिशा में ले जाने की बातें कही गई हैं, जिसमें वह अपने सृजन कौशल को भी बढ़ाएगा, अपने मस्तिष्क के प्रयास को भी बढ़ाएगा, नॉलेज भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ स्किल्स भी एक्वायर करेगा।
जेएस राजपूत जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चार वर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एनसीईआरटी के पूर्व महानिदेशक डॉ जेएस राजपूत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है eirnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नम्बर है 9289904044।